एक बार बार एक बार कर तल पर पीना तो हरिगुण गान प्रवीण एक बार
कर तल
एक बार कर तल पर भी एक बार एक बार एक बार गावत हरि गुण गान प्रवीण नारद जी वीणा बजाते हुए भगवान के गुण गाते हुए क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथ। अच्छा देखो कितना अद्भुत, कहां गए क्षीर समुद्र। यहां विशेषता किस पर है, एक बार करतल वर वीणा, साज की प्रशंसा है, वीणा बहुत अच्छी
श्रेष्ठ,
और गायक की प्रशंसा है गान प्रवीण, और हरिगुण बीच में। देखो अगर मन से भगवान के गुण न गाए जाएं अथवा भगवान न गवाएं तो फिर संगीत धन्य होता है भगवान की कथा से जुड़कर, संगीत के कारण कथा धन्य नहीं होती। और अगर संगीत से ही कथा धन्य होने लगे तो साज आवाज कार्यक्रम हो गया। और नारद जी वीणा को श्रेष्ठ कह रहे हैं, गायन प्रवीण स्वयं है और हरिगुण एक बार 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 नहीं जाएंगे हम भी। कोई लक्ष्मी माता ने कहा कि आपने नारद जी की खबर नहीं ली, भगवान बोले कि नारद जी को एक बीमारी हो गई है, हम लेंगे उनकी खबर पर अच्छी तरह लेंगे। तब तक नारद जी क्षीर सिंधु में आए, भगवान को जैसे ही पता लगा नारद जी आए हो, नारद जी चरणों में प्रणाम करने वाले थे पर भगवान ने प्रणाम ही नहीं करने दिया। हरस मिले उठी रमा निके, नारद जी जो के वह भगवान का नहीं 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 हृदय से लग जाओ। नारद जी भी समझ गए कि भगवान को भी पता लग गया कि पुराने वाले नारद नहीं रहे, अब इनको चरणों में झुकने की आवश्यकता नहीं है, बराबरी वाले तो मिलते ही हैं। अब नारद जी मिलने के बाद नीचे बैठने लगे, भगवान का वहां नहीं आए बैठे, आसन ऋषि ही समेता। अब श्री नारद जी को पक्का हो गया बराबरी से बिठाया, और भगवान ने एक तीसरा व्यंग किया, बोले बिहसी चराचर राया बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। हे मुनि महाराज आपने बहुत दिनों में दया की, मानो भगवान का व्यंग यह था कि पहले तो आप दर्शन करने आते थे अब तो दया ही करने आए होगे, कभी दर्शन की तो अब आपको आवश्यकता है नहीं, दया करने आए। कहां रहे? और नारद जी इसी मौके की तलाश में थे, तुरंत बोले अरे क्या बताएं समाधि लगे, समाधि लग गई तो सर्दी गर्मी भर, अरे इनकी कौन कहे काम आया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा आपकी कृपा से, आपकी कृपा से। ये कैसे कह रहे, नारद कहा सहत अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। कोई क्या कह रहा है मूल्य इसका नहीं है, कोई कैसे कह रहा है मूल्य इसका है। भगवान ने कहा तुम्हारे सुमिरन ते मिटही मोह मार मदमान। श्री नारद जी आपके स्मरण से ये कामादिक विकार नष्ट होंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए कि अभी तक भगवान के स्मरण से मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। लेकिन भगवान ने ये बात कही कैसी थी, रूख बदन करी वचन मृदु, रूखा मुख करके, और नारद जी ने भगवान का मुख नहीं देखा। नारद जी ने कहा आप चले, अच्छा ठीक। नारद जी तो गए, भगवान को बड़ी चिंता हुई, नारद जी हमारे हैं मेरे अपने हैं, पर इन्हें बीमारी हो गई। उर अंकुरे गर्भ तरु भारी, बेग सुमें डारी हूं उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। लक्ष्मी जी ने कहा आप भी बड़े अद्भुत हो, अहंकार आपने तो बढ़ाया, क्यों? नारद जी आए, प्रणाम नहीं करने दिया, हृदय से लगा लिया, बराबरी पर बिठाया, तो अभिमान तो बढ़ेगा। अगर उनके मन में अभिमान तो आपने बढ़ाया काहे को ये सम्मान देकर। भगवान ने कहा कि किसी व्यक्ति के शरीर में फोड़ा हुआ, वो एक वैद्य के पास गया, वैद्य ने दवा दी, खा लेना बैठ जाएगा। उसने दवा नहीं खाई, अब दूसरे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब ये फोड़ा पहले दिखाया था किसी को, हाँ दवा दी थी उन्होंने, हाँ खाई नहीं, इसीलिए बैठा नहीं फोड़ा, अब तो ऑपरेशन लायक हो गया, तो ऑपरेशन कर दो। ये बैठने लायक बच्चा नहीं, ऑपरेशन लायक हुआ नहीं, फिर बोली दवा खाओ थोड़ा और बढ़े, जब बढ़ जाए तब ऑपरेशन करेंगे। तो भगवान ने कहा कि नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा हुआ, शंकर जी रूपी वैद्य ने उपदेश की गोली दी, नारद जी ने खाई नहीं, फोड़ा और बढ़ गया, वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए और बढ़ावे। तो ऑपरेशन किसके द्वारा कराओगे? श्रीपति ने जय माया तब प्रेरी, श्रीपति ने जय माया तब प्रेरी, निज माया
तब प्रेरी, श्रीपति
ने जय भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, मम माया दुरतया। नारद जी का उपचार करना है और माया जो न करावे। माया ने बड़ा सुंदर नगर बसा दिया, अरे सब जग को रही नचाए हरी माया जादूगरनी,
सब जग को रही नचाए हरी माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हर माया जादूगरनी,
कोया को पार न पावे ये सबको नाच नचावे,
कोया को पार न पावे या सबको नाच नचावे,
दुख में सुख को दर्शाए हरि माया जादू करनी,
दुख में सुख को सरसाए हरि माया जादू करनी,
या के बस में चरा चर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाचे,
या के बस में चरा चर नाचे कोई कृपा पात्र जन बाचे,
यही सदगुरु ने ही बचाए हरि माया
बचाए हरि माया जादू कर,
जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले, जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु जी से बूझे,
जब पंथ न कोई सूझे तब जाए गुरु
को कौन उपाय हरि माया जादू करनी,
बचबे को कौन उपाय हरि माया जादू करनी,
जो राम नाम नित बोले सोया सो निर्भय डोले,
जो राम नाम नित बोले सोया से निर्भय डोले,
दई गुरुवर गैल बताए हरि माया जादू करनी,
कई गुरुवर के बताए हर माया जादू करनी,
नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो,
नहीं और कछु बस मेरो राजेश चरण को चेरो,
गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हर माया जादू करनी,
गुरु कृपा पे बलि हरि माया जादू करनी,
सब जग को नहीं नचाए हरि माया जादू करनी,
सब जग को नहीं नचाए हरि माया जादू करनी,
माया ने नगर बनाया बिरचू मगमा नगर ते सतजोजन विस्तार, श्रीनिवास पुर ते अधिक रचना विविध प्रकार, श्री नारद जी गए जो नगर देखा, अब भगवान की माया, नारद जी ठहरे महात्मा नगर से तुम्हें आपको क्या लेना देना आगे बढ़ो, पर नारद जी बोले थोड़े में क्या बिगड़ता है, पर जब बिगड़ता है ये थोड़े ही थोड़े में बिगड़ता है, नारद जी नगर देखने गए, वाह नगर तो बड़ा अच्छा, अभी इस रास्ते से गए तब तो नहीं था, अब नगर कहीं इतनी जल्दी बसते हैं, पर भगवान की माया अघटित घटना पटी ऐसी माया की विलक्षण शक्ति, देखा पूरा नगर सजा हुआ है तैयारियां हो रही हैं, क्या बात है यहां का राजा शीलनिधि अपनी बेटी विश्वमोहिनी का विवाह कर रहा है, अब जब पता लग गया था कि राजा अपनी बेटी का विवाह कर रहा था तो वहीं से लौट आते, कौन सा वहां विष्णु पुराण हो रहा था कि भागवत कथा हो रही थी, कायम गए, और नारद जी ने सोचा चलो क्या बिगड़ता है थोड़ा, गए राजा ने प्रणाम किया, बेटी को बुलाकर प्रणाम कराया, और जो विश्व मोहिनी को देखा, एक महात्मा कहा करते थे चार बातें याद रखो, देखो भालो तको मत, बोलो चालो बको मत, खाओ पियो छको मत, और चलो फिरो थको मत। अब नारद जी ने विश्वमोहिनी को देख लिया कोई बात नहीं, पर देख ही नहीं रहे बड़ी बार लगी रही निहारी, और ये फोटो कितनी देर में खींचता है, एक सेकंड नहीं लगता, वो कहता बस हाँ थोड़ा मुस्कुराइए खिंच गया, ये चित्त भी ऐसा विचित्र है महाराज, नारद जी हाथ पकड़े देखे मोहे, देखा, उस हस्तरेखा में कुछ लिखा था, नारद जी को कुछ समझ में आया। उसमें लिखा था जो यही बरई अमर सोई होई, इसका विवाह जिससे होगा वो अमर होगा। श्री नारद जी ने सोचा कि विवाह हो जाएगा जिसके साथ वो अमर हो जाएगा, और युद्ध में कोई नहीं जीतेगा, चर अचर जिसकी सेवा करेंगे। नारद जी ने सोचा हमारे भगवान होने में यही कसर है, और राजा के बेटा नहीं है, और ये श्रीनिवास पुरते अधि कछुक बनाए भूपसन भाखे। अब नारद जी हस्तरेखा देखते समय जो हाथ पकड़ा, पाणी ग्रहण तो हो ही गया। लेकिन बात बने कैसे, लेकिन कुछ भी हो, मैं नारद जी जैसे महात्मा को, महापुरुष को इस क्षण भी प्रणाम करता। माया ने कितना ही विचलित कर दिया हो, कैसी भी वासना आ गई हो, पर महात्मा के मन से एक ही बात बाकी, मोरे हित हरि समुन को, यही अवसर सहाय सोई हो,
यही अवसर सहाय सोई हो।
श्री नारद जी ने कहा कि मेरा हितैषी भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं है। यही कारण है कि नारद जी बचा लिए गए, और प्रताप भानु नहीं बचे। क्योंकि प्रताप भानु कपटी मुनि के लिए कहते थे, तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखों को, आप ही हमारे हितैषी हो। भगवान ने कहा तुमने अपने हितैषी ढूंढ लिए, तो तुम जानो तुम्हारे हितैषी जाने। पर नारद जी कहते हैं मोरे हित हरि समझ, बहुविध विनय की न तेही काला प्रगटे प्रभु। अच्छा, हमारे भगवान भी बड़े विलक्षण है, कृपालु तो है, कौतुकी पहले है, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। अब नारद जी ने भी देखा, मुनि नयन जुड़ाने, भगवान ने कहा नारद जी कैसे याद किया? अरे महाराज एक जरूरी काम आ गया। भगवान मनी मन हंसे कि कल काम को जीत कर आए थे, आज काम आ गया। क्या चाहते हैं अब आपसे क्या छिपाएं? विवाह। भगवान ने कहा बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर विचार है, हमारे लायक कोई सेवा, आप अपना रूप दे दो। आपन रूप दे हो प्रभु मोही। भगवान मन ही मन हंसे के धन्य हो नारद जी, रूप हमारा विवाह है तुम्हारा। नारद जी बोले आन भांति नहीं पाओ। अब नाम नहीं ले रहे हैं, आपके सामने संकोच होता है किसे, ओ जी को भगवान समझ गए। अब भगवान बड़े परेशान के नारद जी कह रहे हैं सुंदर बना दे, और राम सदा सेवक रुचि राखी, और रुचि रखते हैं तो जिंदगी भर के लिए बंदर बन जाएंगे। फिर काम नचाएगा को जग काम नचाव न जेहि। तब तक नारद जी कई मुख से निकला जेहि विद होए नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास में तोरा। भगवान ने कहा ये ठीक है, ये विध हो ये परम हित। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं जिसमें परम हित होगा वो करूंगा। और नारद जी ने सोचा कि हित में विवाह हो जाएगा, परम हित में आगे परिवार बढ़ेगा सब। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। जबकि भगवान स्पष्ट कह रहे थे कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी वैद न दे सुनो मुनि जोगी, यही भी हित तुम्हारे में ठय। भगवान ने मुनि का हित करने के लिए बंदर का चेहरा दिया, लेकिन भगवान नारद जी की हंसी नहीं कराना चाहते, किसी साधु का उपहास भगवान नहीं कराना चाहते। उनको लगा कि बंदर वाला चेहरा केवल विश्वमोहिनी को ही दिखे और किसी को नहीं, इसीलिए सबने नारद जान समय सिर नावा। पर शंकर भगवान को यह था कि नारद जी को मना किया, ये बिना कहे बिना मानेंगे नहीं भगवान को। तो उन्होंने अपने दो गण पीछे लगा दिया और रुद्रगण शंकर जी को समाचार सुना रहे, अब ऐसा हुआ, अब ऐसा हुआ। शंकर जी बोले वहीं रहो, आंखों देखा हाल बताओ। नारद जी सुंदर बनने आए, भगवान ने बंदर बना दिया। शंकर जी सोचने लगे इसका अर्थ है भगवान जिसका हित करना चाहते हैं उसे अपना बंदर बनाते हैं, पर हित हुआ क्या, वहीं रहो। अब रुद्रगण भी बोले भगवान से कि इनका बंदर वाला चेहरा हमें भी दिखना चाहिए। भगवान ने कहा वो गोपनीय मामला है। रुद्रगण बोले कितनी गोपनीय मामला हो, हम तो संवाददाता हैं, शंकर जी से संबंध स्थापित किया, हमको भी अधिकार है। भगवान बोले तो तुम भी देखो। तो एक तो भगवान कौतुकी प्रगटे, प्रभु कौतुकी कृपाला, और श्री नारद जी मुनि कौतुकी नगर ते गए वो कौतुकी, और ये रुद्रगण भी प्रवेश देखत फिराई परम कौतुकी ते, इतने कौतुकी इकट्ठे हुए। अब ये रुद्रगण नारद जी क्या बात आपस में कहे ऐसी सुंदरता। अब दूसरा बोले कोई संदेह इसमें। अब नारद जी पूछते क्या क्या बात, नहीं नहीं कुछ नहीं बात, नहीं नहीं फिर भी संकोच बोलो, संकोच ये है आप जैसा सुंदर। नारद जी बोले सर हाँ महाराज। दूसरा बोला हमने तो ऐसी सुंदरता सुनी भी नहीं, देखने की कौन कहे। अच्छा कहां मिली ऐसी सुंदरता। नारद जी बोले भगवान से और कोई दे सकता है। वाह वाह विवाह आपका पक्का तय। और जब नारद जी दूसरी तरफ मुख करे तो हंस लें, और नारद जी देखें तो फिर शांत होकर बैठ जाए। करहिं कूट नारद नहीं सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। अब विश्वमोहिनी आई। अब नारद जी पुनि पुनि मुनि उख सही अकुलाही। नारद जी ने कहा हम एक बार खड़े हो जाएं देख तो जाएं। रुद्रगण बोले आप तो बैठो। काहु न लखा सो चरित विशेखा सो स्वरूप नृप कन्या देखा। अब विश्वमोहिनी ने जो देखा दोबारा देखा ही नहीं। मरकट बदन भयंकर देही देखत हृदय क्रोध भाते ही। यही दिस बैठे नारद फूली सो दिस तेही न बिलो की भूली। श्री नारद जी जिस दिशा में बैठे थे उस दिशा में ही नहीं देखा। और सचमुच जो भगवान का बंदर बन जाता है उसकी दिशा में भी जो बैठता है ये विश्व को मोहित करने वाली माया उस दिशा की ओर देखती तक नहीं है। व्यापने की कौन कहे। भगवान राजा के रूप में गए। कुंवरी हरसी मेले उ जय माला। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा नृप समाज सब भय उ निराशा। अब रुद्रगणों से बोले क्यों तुम तो कह रहे थे कि आपका विवाह होगा। रुद्रगण बोले गलत थोड़ी कह रहे थे, आप सुंदर हैं चेहरा देख लो। निज मुख मुकुर बिलो कहु जाई। अब कोई इनसे कहे कि नारद जी को ये नेक सलाह पहले नहीं दे सकते थे, पर ये दुनिया वाले सलाह देते ही तब हैं जब आप किसी लायक ना बचे। जल में रूप देखा बड़ा क्रोध आया। श्राप दिया, महात्मा की हंसी उड़ाते हो निशाचर जाए। दोनों राक्षस हो जाए।
बोले हमने तो सूचना दी, जिसने सुंदरता दी बोले अब उन्हीं के पास जा रहे हैं। हरकत अधर कोप मन माही, पर भगवान रास्ते में ही मिल गए। मुनि कहां चले विकल के, कहां जा रहे महाराज? और भगवान ने एक काम और किया, अकेले मिलते तो कोई बात नहीं, संग रमा सोई राजकुमार। एक और लक्ष्मी जी, दूसरी और विश्वमोहिनी। नारद जी को लगा खुद दो दो को लिए खड़े, हमारा एक विवाह नहीं होने दिया। नारद जी बोले बस आपके ही पास। और इतनी गालियां सुनाई नारद जी ने, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, भले भवन अपायन दीना, पावोगे फल आपन कीना। और भगवान हंस रहे हैं। नारद जी ने कहा गाली दे रहे हैं आप, हंस रहे हैं? भगवान ने कहा अभी अभी विवाह हुआ, विवाह में गाली दी ही जाती है। वहां किसी ने गाली दी नहीं तो आप यहां, हमें लग रहा कि विवाह ही हो रहा है। नारद जी बोले श्राप दूंगा, बड़े स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं, जो शरीर धारण करके मुझे वंचित किया, राज्य परिवार में ही जन्म, राजा बनो। तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, पत्नी के विरह में रोते हुए घूमोगे, और बंदर का चेहरा मुझे दिया, बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। अब बोलो, ये भगवान की इच्छा है? नहीं, दूसरा कोई श्राप देता तो ऐसे ही कहता कि तुमने राजा बनकर छला, तुम कभी राजा ना बनो, तुमने हमारा विवाह नहीं होने दिया, तुम्हारा कभी विवाह ना हो, और तुमने बंदर का चेहरा दिया, बंदर ही तुम्हें काट काट कर खाएंगे, यही सब होता। पर नारद जी ने कहा कि बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे, राजा बनोगे, पत्नी के विरह में रोगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए कि पत्नी के विरह में रोएंगे मतलब विवाह पक्का। भगवान ने कहा कि नारद बाबा अब मत कहना न सिर पर कोई, क्यों? श्राप शीश धरी हरस ही है, प्रभु बहु विनती की, मैंने श्राप सिरोधारी कर दिया। विनती कर रहे हैं भगवान, और निज माया की प्रबलता करसी कृपा निधि लीन, अपनी माया की निवृत्ति की।
जब हरे माया निवारी, जब हरे
चरणों में गिर गए थे। तब मुनि अति सभीत हरि चरणा, गहे पाय प्रणतारति हरणा, मृषा हो मम श्राप कृपाला, हे भगवान मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। पर भगवान ने कहा मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरी इच्छा है, मेरे मन को शांति नहीं मिल रही, जपहु जाए शंकर सतनामा। 108 शिव जी के नामों का स्मरण करो, शांति मिलेगी। एक सज्जन मध्य प्रदेश के रहने वाले हमें मिले, बोले महाराज मानस में तो हमारे शहर का वर्णन है। हमें कहां? सतना के रहने वाले थे। बोले मानस में लिखा है जपहु जाए शंकर सतनामा। भगवान तक ने कहा कि सतना में शंकर जी के नाम जपो। अरे हमने कहा भैया वो सतना में नहीं, 108 नामों के लिए संकेत है। एक यह प्रसंग, दूसरा महाराज मनु और सतरूपा जी का प्रसंग। महाराज जनक को घर नहीं छोड़ना पड़ा, क्योंकि जनक जी सहज विराग रूप मन मोरा, उनको सहज वैराग्य की प्राप्ति है, पर महाराज मनु को हो इन विषय विराग भवन वसत भा चौथपन, विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। वैराग्य एक भाव दशा है, त्याग क्रिया है। तो महाराज मनु ने त्याग किया और संतों के संग में गए, वैराग्य भाव जागा, भगवान से अनुराग हुआ। आहार विहार बदलने से जिंदगी बदल जाती है। भगवान श्री सीताराम जी जब प्रकट हुए तो उन्होंने भगवान से यही मांगा, चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान ने कहा, कुछ दिन बाद जब अयोध्या के राजा बनोगे तब हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। एक यह कारण जिसके कारण भगवान का अवतार हुआ। एक राजा प्रताप भानु की कथा है। प्रताप भानु, देखो नाम कितना अद्भुत, प्रताप भानु, जिनका प्रभाव भानु की तरह हो, सूर्य की तरह। लेकिन सूर्यास्त का भी तो समय आता है। भवितव्यता का वर्णन है, तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। भवितव्यता के कारण प्रताप भानु वन में गए, कपटी मुनि के चक्कर में पड़े, अंत में ब्राह्मणों का श्राप मिला। तो ब्राह्मणों ने भी कहा, भूपति भावी मिटई नहीं यद्यपि न दूषण तो, ये भावी मिटेगी नहीं। और इस भवितव्यता से हमें इन सम्मानित महापुरुषों के चरित्र में अगर कुछ ऐसा दिखाई दे तो इसको भी भावी ही मानना चाहिए। महाराज दशरथ तुलसी नृपति भवितव्यता बस काम कौतुक लेकर, अरे और तो और, सो भावी बस रानी अयानी। और गुरु वशिष्ठ जी ने भी कहा, सुनो भरत भावी प्रबल। लेकिन भावी को तो शंकर भगवान मिटा देते हैं, भावी वो मेट से कहीं त्रिपुरारी। श्री दशरथ जी ने भी कहा, आज तो उस तुम अवडरदानी, प्रार्थना की। श्री भरत जी मांगे ही हृदय महेश मनाई, पर शंकर जी ने भावी नहीं मिटाई। भोले बाबा क्या झूठा प्रचार करा दिया। शंकर जी बोले, हम अपने घर की भावी नहीं मिटा पाते। सती जी को समझाया, भावी बसना ज्ञान उड़ावा। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, प्रारब्ध जन्य भावी को हम मिटा देते हैं, लेकिन एक भावी बड़ी प्रबल, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभु सुजाना। भगवान की इच्छा, रावण बना, कुंभकर्ण, और जो विमात्र बंधु विभीषण सचिव, विभीषण जी धर्म रुचि नाम था, विभीषण जी मने रावण कुंभकर्ण विभीषण जी ने तप किया। ब्रह्मा जी शिव जी के साथ वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कि आप भी चलो। क्यों? रावण वरदान ही मांग रहा था, हम काहू के मर ही ना मारे। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, हम सृष्टि को जन्म देने वाले देवता हैं, तो सृष्टि का संहार करने वाले देवता शंकर जी साथ में हैं। अर्थात जन्म के साथ ही मृत्यु जन्म ले लेती है, जिसका जन्म उसकी मृत्यु। तो ऐसा करो कि हम मरे तो बानर मनुज जाति दुई बारे। कितना अद्भुत संकेत है, हमें कोई न मार सके पर हम मनुष्य के हाथ से मरे। और इसका अर्थ है, दानवता जब मिटेगी मानवता के द्वारा ही मिटेगी, और कोई उपाय नहीं है। और ये बंदर मन है, मन जिसके वश में हो, मन का स्वामी ही मनुष्य रूप में प्रकट होकर दानवता को मिटाएगा, ऐसा वरदान दिया। अब तीनों कुंभकर्ण ने निद्रा मांगी, मांगिस नींद मास सटकेरी, और विभीषण जी ने तेही मांगियो भगवंत पद कमल अमल अनुराग। विभीषण जी भगवान के भजन में लग गए, कुंभकर्ण सोने में लग गया, और रावण आपन चले उगदा कर लीनी, जगह जगह त्राहि त्राहि करने लगी पृथ्वी। तब देवताओं ने मिलकर प्रार्थना की,
सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर, तनुधारी भूमि विचारी,
संग गो तनुधारी भूमि विचारी,
परम विकल भय शोक,
परम विकल भय शोक,
गे
जी के यहां गए, सबने प्रार्थना की, पर ब्रह्मा जी ने भी कहा,
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना,
ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना,
मोर कछु न बसा,
मोर कछु न बसा,
जा करते दा सो अविनाशी,
चरित दासी तो अविनाशी,
हमने ऊ तोर सहा,
हमने ऊ तोर सहा।
कितनी अद्भुत बात, बुद्धि के देवता ने बड़ा सुंदर सुझाव दिया, बुद्धि से ऊपर भगवान है। जब अपनी अकल काम न करे तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। सब लोग गए भगवान से प्रार्थना करने, ये इकट्ठे तो हो गए पर एक नहीं है। कोई कहता है कि बैकुंठ में चलो, वहीं भगवान को प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। कोई कहे क्षीर सागर में चलो। अब दो दल हो गए, अब एक दल हो तो दल हो, दो दल हो तो दल दल, और इस दल दल से निकलना बड़ा मुश्किल। और सब अपने अपने मत को पुष्ट करें। भगवान की प्रार्थना तो शुरू नहीं हुई, झगड़ा पहले शुरू हो गया। अच्छा, शंकर भगवान भी थे पर वो बोले ही नहीं। किसी ने शंकर जी से कहा कि आप तो कुछ बोलते हैं। शिव जी बोले, ये जितने मत वाले हैं, ये मत वाले ये सुनते कहां हैं किसी को, ये तो सुनाते हैं। पर अवसर मिला तो अवसर पाए वचन एक कहें। कितना सुंदर वचन है यह मानस का, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जैसे शिव भगवान शिव ने कहा हरि व्यापक, तो बैकुंठ वाले बोले व्यापक तो हम भी मानते पर बैकुंठ में जरा ज्यादा है। क्षीर सागर वाले बोले व्यापक हम भी मानते पर क्षीर सागर में जरा ज्यादा है। पर शिव जी बोले न कहीं कम न कहीं ज्यादा, सर्वत्र समाना। अच्छा, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्रेम ते प्रगट हो ही। किस ग्रंथ के आधार पर कह रहे? अरे ग्रंथ नहीं, हम अपने अनुभव की बात कह रहे। मैं जाना, मैं कह रहा हूं, गुरुदेव के वचन पर विश्वास। अच्छा देखो, जैसे आपको वृंदावन में हैं आप, और मथुरा जाना हो तो जाना पड़ेगा, मथुरा यहां नहीं आएगी, और मथुरा में हो तो वृंदावन वहां नहीं जाना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको धरती पाना हो तो मथुरा वालों को धरती पाने के लिए वृंदावन नहीं आना, वृंदावन वालों को धरती पाने मथुरा नहीं जाना। धरती तो सब जगह है, तो परमात्मा तो सब जगह है, उसे पाने के लिए कहां जाना, आप जहां मान लो वहीं है। इसीलिए भक्ति स्वतंत्र, भगवान को जहां मानो वहीं, जिस रूप में मानो वही। पर कोई न समझे तो अलग बात है, दो आदमियों में झगड़ा हुआ, एक बोला पृथ्वी गोल है, दूसरा बोला नहीं चपटी है, वो कहे गोल है वो कहे चपटी, दोनों में झगड़ा शुरू, तब तक तीसरा आदमी निकला, तो दोनों बोले हम लोग झगड़ रहे हैं भैया, तुम बताओ पृथ्वी गोल है कि चपटी। तो बोला कि यही वाले से पूछो, हम तो बाहर के आदमी हैं, बाहर के रहने वाले, मतलब ये वहां से आया है जहां पृथ्वी नहीं है। अरे भाई, परमात्मा व्यापक है, सब में व्याप्त है। शंकर जी की बात मान ली तो सदगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। श्री कबीरदास जी ने कहा, एक गांव था सूरदासों का नगर, जिसमें सब सूरदास। सूरदासों के नगर में एक हाथी आ गया, महावत बैठा हाथी को लेकर। अब हाथी की घंटियां टन 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 बजी, सूरदास बोले क्या है, महावत ने कहा हाथी है। हाथी कैसा होता हम देखेंगे, बोले तुम्हारी आंख नहीं, हाथ तो है। महावत ने हाथी बिठा दिया, अंधे टूट पड़े, किसी ने पांव पकड़े, किसी ने सूंड, किसी ने कान, किसी ने पीठ, देख लिया हाँ देख लिया। महावत तो हाथी लेकर चला गया, अंधों में झगड़ा शुरू हो गया। जिन्होंने पांव पकड़ा था वो कहते थे हाथी मोटे पेड़ की तरह होता है, गोल खंबे की तरह। सूंड पकड़ने वाला बोला नहीं, खुरदुरे पेड़ की तरह होता, नीचे पतला ऊपर मोटा। कान पकड़ने वाला कह के नहीं नहीं, वो तो सूप की तरह होता, छाजड़े की तरह। पीठ पकड़ने वाला कह के वो गोल चबूतरे की तरह होता। पूंछ पकड़ने वाला कह पतली लाठी की तरह, जिसके आगे बाल लगे होते हैं। अब बोलो, झगड़ा शुरू हो गया और इतना झगड़ा हुआ कि पीठ पकड़ने वाले पांव पकड़ने वाले से नहीं बोलते थे, पांव पकड़ने वाले पूंछ पकड़ने वाले से न बोले, और ये तीनों सूंड पकड़ने वाले से ना बोले, सूंड पकड़ने वाले कान पकड़ने वालों से ना बोले। कुछ अंधे उस समय मौजूद नहीं थे, वो बाद में आए, उनको जब पता लगा तो बोले हम पहले ही अच्छे थे जब हाथी नहीं आया था, इसने तो आके उपद्रव कर दिया। अच्छा अब आप एक बात सोचना, इनमें कौन आदमी है जो गलत बोल रहा है और कौन आदमी है जो सही बोल रहा है। जिसको जो पकड़ में आया वो उसी को पूर्ण मान रहा है, बस बात इतनी है। इसलिए झगड़ा जब होता है अंधों में ही होता, आंख वालों में नहीं होता। और आंख मिलती कब है, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दग दोष विभंजन। महावत लौट के आए, अंधे फिर टूटे गए, हाथी कितने लिए हो, हाथी तो एक है। बोले हमें अनेक क्यों लग रहा है, बोले तुम्हारे आंख नहीं है, अगर आंख होती तो तुम अनेक में एक को देख पाते, पर आंख नहीं है इसलिए एक में अनेक को देख रहे हो। और मैं भी आपसे यही कहता हूं कि अनेक सत्य है, पर ये सब हाथी के अंग हैं, पर हाथी इन सब अंगों में समाया हुआ एक है। इसी तरह उस परमात्मा को जो भक्ति ज्ञान की आंखों से देख लेते हैं, उनके सारे झगड़े मिट जाते हैं गुरुदेव की कृपा से। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम के, अब प्रेम जिस रूप में करो जैसे करो ठीक है, प्रकट हो ही मैं जाना। सबने प्रार्थना की,
जय
जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन का जय जय सुर जय 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 सुरनायक जय जय सुरनायक जय सुरनायक
प्रार्थना की गगन गिरा गंभीर भई हरण शोक संदेह जनिंदर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हारे लिए मैं मनुष्य शरीर धारण करूंगा। महाराज दशरथ माता कौशल्या के यहां हम अंशों के साथ अवतार लेंगे। ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, देवता अपने धाम को जाने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कहां चले? का भगवान आ रहे हैं, हमारी क्या जरूरत है? अरे का जब भगवान नर बन सकते हैं तो तुम बानर भी नहीं बनोगे? बानर तनु धरी धरी मही हरि पद से वहु जाए। भगवान ने आश्वासन दे दिया। अब तो महाराज दशरथ की कथा सुना।
एक बार भूपति मन माए, एक बार तुरत मही पाला,
तुरत मही पाला,
चरण लागी करी विनय विशाला,
चरण लागी करी विनय विशाला,
निज दुख सुख सब गुरु ही
सुनाया, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया,
कहे वशिष्ठ बहु विधि सुना,
कहे वशिष्ठ
महाराज दशरथ। नाम कितना बढ़िया, रामचरितमानस में दो की कथा है, एक और श्री दशरथ, दूसरी और दशानन। यह हमारे जीवन की कथा है। पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, इनको जिसने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए रथ बना लिया, संयम पूर्वक जीवन बिताया, वह श्री दशरथ जी की परंपरा का है। और जिसने दसों इंद्रियों को भोगों के लिए आनन बना लिया, वही दशाननी वृत्ति का है। खाओ पियो मौज करो। हमारे यहां चार वाक जी हुए, उन्होंने तो कहा यावत जीवित सुखम जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबे भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। एक दिन मर जाओगे, कौन आता है कौन जाता है? देखो भैया, इस युग के दिवंगत कवि सम्माननीय काका हाथरसी जी ने चारवाक के इस श्लोक का भावानुवाद किया। कह काका कविराय नाम कुछ रोशन कर जा, मरना तो है ही कर्जा लेकर मर जा। खाओ पियो मौज करो, अरे इतनी ही जिंदगी नहीं है। दसों इंद्रियों पर संयम और सत्संग नगरी में निवास संत सभा अनुपम अवध और तीन विवाह, बड़े सांकेतिक हैं। हम कुछ ना कुछ किए बिना नहीं रह सकते, किसी ना किसी को माने बिना नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ जाने बिना नहीं रह सकते। इसलिए महापुरुषों ने कहा कुछ किए बिना नहीं रह सकते तो सत्कर्म करो। किसी को माने बिना नहीं रह सकते तो भगवान को मानो, और कुछ जाने बिना नहीं रह सकते तो अपने आप को जानो। यही दशरथ जी के तीन विवाह हैं, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी, कर्म का स्वरूप कैकेयी माता सत्कर्म का स्वरूप, उपासना का स्वरूप माता सुमित्रा, और ज्ञान निष्ठा का स्वरूप माता कौशल्या। तो तीन विवाह सत्संग की अयोध्या में रहें और स्वयं संयमी, लेकिन संयम हो, सत्संग हो और सद्भाव, सदाचार, सद्ज्ञान हो, पर बात बनती नहीं है। कब तक?
कोशिशें कोई लाखों भले ही करे,
कोशिशें कोई लाखों भले ही करे,
किंतु सद्गुरु बिना बात ग्रंथ पढ़ ज्ञान पालेना आसान है,
ग्रंथ पढ़ ज्ञान पालेना आसान है,
अपना आनंद पाना बड़ी बात है,
अपना आनंद पाना बड़ी बात है,
तन को जल से धुलाना सरल है मगर,
तन को जल से धुलाना सरल है मगर,
मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है,
मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है,
भोग हित भाग जाना स्वाभाविक ही है,
भोग हित भाग
तज भाग जाना बड़ी बात,
भोग तज भाग जाना बड़ी बात,
बन के विद्वान विद्या के अभिमान में,
बन के विद्वान विद्या के अभिमान में,
अपना मत तो चलाना असंभव नहीं, पूरे संयम सहित धर्म की राह पर,
पूरे संयम सहित धर्म की राह पर,
जिंदगी को चलाना बड़ी बात,
जिंदगी को चलाना बड़ी बात,
पंथ में देश परदेश में,
पंथ में देश परदेश में,
चित रहता फंसा राग और द्वेष में,
चित रहता फंसा राग और द्वेष में,
दिल किसी का जलाना कठिन ही है क्या,
दिल जलाना किसी का कठिन क्या,
ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात,
ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात,
ज्ञान में राजेश्वरानंद भरपूर है,
घट में राजेश्वरानंद भरपूर है,
पाने मोह की नींद को,
क्योंकि सुन गुरु वचन मोह की नींद,
त्याग कर जाग जाना बड़ी बात,
त्याग कर जाग जाना बड़ी बात, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात।
महाराज दशरथ सदगुरु के द्वार पर आए, अपना दुख सुख सुनाया। दुख क्या? भगवान नहीं मिले। अजब भगवान नहीं मिले यह दुख है, तो सुख क्या मिल गया? गुरुदेव आपका दर्शन, संत मिलन सम सुख जगनाए। सुख मिल गया तो जाओ, गुरुदेव दुख ने सुख तक पहुंचा दिया तो आप सुख से आनंद तक पहुंचा दें। आनंद का कोई विरोधी शब्द नहीं, आनंद किसी को मिटाकर पैदा नहीं होता, आनंद तो स्वाभाविक है ही। गुरु जी ने कहा कि अगर यही बात है, धरहु धीर
धीर धरहु हुई है सुख चार,
विदित भगत भय हारी धन
सुत चार,
धरहु धीर 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 धैर्य रखो। चारों पुत्रों का जन्म होगा, गुरुदेव मुझे क्या करना है? बोले तुम्हें तो यही करना था, अब कुछ नहीं करना, घर बैठो।
और सचमुच घर में बैठना ही कठिन है, अगर कोई घर में बैठ सके तो गुरुदेव की कृपा से वहीं उन्हें परमात्मा का लाभ प्राप्त होगा।
श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ वशिष्ठ जी ने कराया, आहुति दी गई, अग्निदेव प्रकट हुए,
हवि का प्रसाद।
राजन इस हवि का वितरण करो। दशरथ जी ने कहा मेरे बड़े भाग्य जो आप प्रकट हो गए, तुम्हारे कारण प्रकट नहीं हुआ, जो वशिष्ठ ने जो हृदय विचारा। और कितनी अद्भुत बात है, संकल्प सदगुरु का, कल्याण शिष्य का। इस हवि का वितरण करो। हवि माने खीर। अच्छा देखो, खीर में तीन चीजें तो मिलती हैं, दूध चावल और चीनी, है ना?
पर शुद्ध दूध हो,
ऐसा दूध ना हो कि दूध बेचने वाला या खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर से आए। दूध बेचने वाला बोला देर से क्या आए, आज नल ही देर से आए, जब नल आए जल मिलाए तब लाए, ऐसा है।
शुद्ध दूध,
और ये शुद्ध दूध ज्ञान का स्वरूप है। संत हंस गुण गाहीं पै परिहर बारी विकार, विकार को छोड़कर विचार ही बचता है। यह दूध ज्ञान, और चावल कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, जैसा बोया वैसा ही मिला,
जैसे कर्म किए वैसे ही फल।
अच्छा ज्ञान कितना ही उत्तम हो और कर्म कितने भी महान हो, लेकिन भक्ति के बिना जिंदगी मीठी नहीं होती। इसी तरह ज्ञान का दुग्ध, कर्म के चावल और भक्ति रूपा तो शर्करा है, जो ऐसे मिल जाती है कि अपने को मिटाकर हमारे ज्ञान और कर्म को भी मीठा बना देती है।
और ये तीनों मिल जाए तो घोल है, पर अग्नि में तपे तब खीर है। तपस्या की अग्नि में तपे तब खीर है, और इस खीर को जो पान कर लेगा उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाएंगे, यह संकेत है। महाराज दशरथ ने हवि का वितरण किया, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना, कह के ही कहा सो नृप दयो रहो सो उभय भाग पुन भयो, कौशल्या के कई हाथ धरि दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करे। माताओं के गर्भ में भगवान आ गए। आनंद ही आनंद कुछ दिन बीते,
कछुक दिवस बीते यही भांति सुख जुत कछुक काल चली गय जे ही प्रभु प्रगट सो आवास भय
पवन बहे सब आनंद ही आनंद
जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भये अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम